तो जगन्नाथपुरी में सारे तीर्थों का निवास है और सारे धामों का भी निवास है, ऐसे हमारे आचार्यगण कहते हैं। तो कई सारे तीर्थ हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है गंगा देवी। कौन है? गंगा माता या गंगा देवी। तो जगन्नाथपुरी के निवासी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए गंगा देवी यहाँ आकर प्रकट हो गई है। इस स्थान का नाम श्वेत गंगा है। कौन सी गंगा? तो श्वेत गंगा, ये बहुत विशेष स्थान है। तो जगन्नाथपुरी के कई सारे जो लोग हैं प्रतिदिन यहाँ आते हैं, गंगा जल स्वीकार करते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं कि अपने प्रभु की सेवा के लिए गंगा जी स्वयं यहाँ अवतरित हुई है और गंगा से ये अभिन्न है, गंगा देवी से ये जो स्थान है वो अभिन्न है। तो ऐसी गंगा देवी यहाँ प्रकट होती है, जगन्नाथ की कई प्रकार से सेवा करती हैं। तो जगन्नाथपुरी में 5 महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। ऐसे कहा जाता है कि यदि व्यक्ति इन 5 तीर्थों में किसी में भी उसका सौभाग्य है स्नान करने का, तो वो निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए वो शास्त्रों में कहा गया है, मार्कंडेय वटे कृष्णे रोहिण्यांश महोदधे इंद्रद्युम्ने नरा स्नात्वा पुनर्जन्मन विद्यते। कहते हैं मार्कंडेय सरोवर है जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी, भगवान शिव जी वहाँ आए थे उनके लिए। तो वो एक स्थान है, वो एक सरोवर है। दूसरा है वटे कृष्णे, तो ये जो श्वेत गंगा एक दूसरा स्थान है। और तीसरा है रोहिण्याम, रोहिण्याम मतलब रोहिणी कुंड जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर है। और चौथा स्थान है महोदधे, महोदधी मीन्स जो समंदर है। तो समंदर में किसी भी जगह स्नान करना पवित्र नहीं माना जाता। कुछ शास्त्रों में निश्चित स्थान प्रदान किया है, वहां जाकर ही व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। हम तो देखते बीच कौन सा अच्छा है, वहां जाते स्नान के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये वर दिया है विशेष रूप से 2 बार। चैतन्य महाप्रभु को आनंद आता था सी बीच में जाकर संकीर्तन करने में, तो हमेशा अपने भक्तों को ले जाते थे सी बीच में कीर्तन किया करते थे महाप्रभु। और महाप्रभु ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस समंदर में स्नान करेगा उसके वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और दूसरी चीज, जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा था तो उस समय भी चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के जो शरीर था उसको स्नान कराया अपने हाथों से वहां समंदर में। और स्नान कराकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी ये समंदर साधारण नहीं रहा, ये परम पवित्र हो गया है। जो भी यहाँ स्नान करेगा, जो हरिदास ठाकुर को स्नान कराया है, यहाँ भगवत प्रेम वो प्राप्त करेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ये वर दिया था। तो समंदर भी एक 5 तीर्थों में आता है। और 5वां है इंद्रद्युम्न सरोवर। हम जहाँ रह रहे हैं वहां से पीछे 5 मिनट चल के जाओगे तो इंद्रद्युम्न सरोवर है। तो ये इंद्रद्युम्न सरोवर भी अत्यंत पवित्र है, राजा इंद्रद्युम्न के कारण उसका वो नामकरण है। पुनर्जन्म न विद्यते, तो ये पुराण कहते हैं कि व्यक्ति पुनः इस संसार में जन्म प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ इसके किनारे बहुत सारे विग्रह है, जैसे वहाँ एक छोटा सा टेम्पल है जहाँ श्वेत माधव और मत्स्य माधव है। भगवान श्वेत माधव के रूप में यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में आप भ्रमण करते हो, दर्शन करते हो, आनंद बाजार में जाते हो, तो जगन्नाथ का परम पवित्र जो प्रसाद सारे जगत को पवित्र करने वाला है उसके ऊपर आपके पांव पड़ते हैं। तो वो भी एक महान अपराध है, प्रसादम को लंघन करना या फिर प्रसाद पर पांव पड़ना, ये भी एक अपराध है जगन्नाथ प्रसाद पर। तो उस अपराध से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? तो शास्त्र कहते हैं कि उस व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए श्वेत गंगा के तट पर। और यहाँ श्वेत गंगा के तट पर आकर यहाँ मत्स्य माधव है और दूसरा श्वेत माधव। तो यहाँ आकर मत्स्य माधव या श्वेत माधव भगवान का दर्शन करने से व्यक्ति उस अपराध से मुक्त होता है, क्योंकि जगन्नाथ प्रसाद हाँ, जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, ऐसे कहते कि इतना पावन है कि जो भी सारा संसार हाथ आगे करके खड़ा है जगन्नाथ का भात रूपी प्रसाद प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ जो विग्रह है श्वेत माधव, उनका जगन्नाथ से बहुत विशेष संबंध है, क्योंकि यहाँ एक राजा हुए थे महाराज श्वेत। तो भगवान क्या करते हैं, त्रेता युग में ये राजा हुए थे, और ये जब हमेशा जगन्नाथ टेम्पल में जाते थे तो उस समय इनको लगता था कि मैंने कुछ भगवान के लिए बनाना चाहिए, कुक करना चाहिए। तो ये रोज खिचड़ी बनाकर लाते थे, स्वयं राजा खिचड़ी बना के जगन्नाथ के लिए ले जाते थे। जैसे भागवतम में महाराज अम्बरीश का वर्णन आता है, राजा होकर भी उन्होंने ऐसे नहीं कि लोग आजकल घरों में बड़े बड़े मंदिर बनाते घर के अंदर जो धनी लोग हैं, और बड़े बड़े मार्बल के विग्रह लाते जयपुर वृंदावन से, और वो सेवा खुद नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक नौकर सेवक या पुजारी रखेंगे, और वो कहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सेवा हो रही है, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे भगवान के लिए। तो लेकिन राजा अम्बरीश का वर्णन आता है कि वो खुद सारी सेवाएं करते थे। तो वैसे ही महाराज जो श्वेत थे तो वो खुद भगवान के लिए खिचड़ी बनाकर ले जाया करते थे, और वो सोचते थे कि अरे मैं जो खिचड़ी ले जाता हूँ क्या भगवान उसको स्वीकार करते होंगे। वो कभी कभी उनको डाउट होता था कि लक्ष्मी इतना कुछ बनाती है, उसके अलावा प्रतिदिन देवतागण आते खाली हाथ नहीं लाते, वो कई सारे व्यंजन बनाकर जगन्नाथ के लिए लाते हैं सारे देवतागण। तो उनको लगता है इतने सब सबका वो भोगा स्वीकार करते हैं, मेरे खिचड़ी को देखते हैं या नहीं है, तो ऐसा वो कई बार सोचते थे। तो एक दिन बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा जगन्नाथ की ओर, देखा कि अरे उन्होंने जो खिचड़ी लाया है भगवान जगन्नाथ उस खिचड़ी को खा रहे हैं। तो ये देखकर राजा श्वेत बहुत आनंदित हो जाते हैं, और भगवान का जो उस महाराजा का जो खिचड़ी के रूप में जो प्रेम है वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे महाराज श्वेत, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए भगवान क्या करते हैं उस राजा श्वेत का नाम अपने नाम के आगे डालते हैं। इसलिए यहाँ जो विग्रह है उनका नाम क्या है, श्वेत माधव। भगवान अपने नाम के आगे उनका नाम ये जगह दिखाने के लिए डालते हैं कि देखो हमें कितना अधिक अपने भक्त के प्रेम से बंधा हो, कितना अधिक अपने भक्त से प्रीति रखता हूँ। तो इस प्रकार से श्वेत माधव यहाँ विग्रह हैं, जिनका दर्शन करने मात्र से ये सारे जो अपराध हैं प्रसाद के ऊपर हमारा पाँव आदि पड़ता है, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आते हैं कि यहाँ एक सेवक थे जिनका नाम था तलुचा महापात्र, पंडाल होते हैं ना यहाँ पुजारीगण, तो ऐसे जगन्नाथपुरी में ये भी एक पंडा थे जो जिनकी बहुत इच्छा थी कि मुझे वाराणसी जाना है और वहां जाकर गंगा में स्नान करना है। जैसे लोग कलकत्ता रह रहे होंगे वो गंगा के तट पर, वो कहेंगे गंगा स्नान करने के लिए कहाँ जाना है, हरिद्वार, वहां से प्रभुपाद कहते ट्रेन पकड़ेंगे हरिद्वार के लिए। रह रहे यहाँ कलकत्ता में भी गंगा है लेकिन स्नान करने के लिए वहां पहुंचेंगे। तो ये जो व्यक्ति था वो उसको लगा कि मुझे अभी गंगा स्नान करना है अपने जीवन में, और वो भी वाराणसी में जाके स्नान करना उसका अलग ही महिमा है। तो वो यहाँ आ गया लेकिन देखा कि वो बहुत बूढ़ा हो गया था, बहुत शरीर जर्जर हो गया था, उसने सोचा भी ये मेरी इच्छा कैसे पूर्ति होगी, तो ऐसे आ गया यहाँ, सोचो चलो वहां नहीं तो यहाँ ट्राई करता हूँ। जैसे उसने यहाँ डुबकी लगाई तो वापस यहाँ नहीं निकला, कहाँ निकला कहा वाराणसी मणिकर्णिका घाट में निकला, वो फेमस घाट है, शिव जी का प्रिय घाट है। तो वहां निकला, देखा अरे ये तो मैं वो श्वेत गंगा में नहीं हूँ, मैं कहा हूँ वाराणसी मणिकर्णिका घाट में हूँ। और फिर उसने सोचा कि सही में ये जो गंगा देवी है ये मतलब अभिन्न है इससे, श्वेत गंगा से। तो फिर वहां डुबकी लगाता है तो फिर कहाँ निकलता है, यहाँ जगन्नाथपुरी में। इतना अमेजिंग है था, कितना हम ट्रैवल करना ऐसी है। हाँ तो उसका वो इतना श्रद्धा था गंगा के ऊपर। हाँ जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे कई आचार्य थे केवल गंगा जल ही पिया करते थे वो, और इवन पुंडरिक विद्यानिधि का भी वर्णन आता है इससे संबंधित। तो ऐसा ये जो स्थान है श्वेत गंगा से अभिन्न है। और एक बार यहाँ एक महान हमारे संप्रदाय की एक वैष्णवी है जिनका नाम था गंगा माता गोस्वामिनी। तो उनके बारे में विशेष लीला यहाँ बताई जाती है। वैसे इसका नाम श्वेत गंगा इसलिए भी पड़ा, एक तो महाराज श्वेत भी, और दूसरा है कि जब वो पर्व आता है गंगा सागर मेले का, तो हर कोई व्यक्ति गंगा सागर जाना चाहता है स्नान करने के लिए, तो यहाँ का जो वाटर है वो श्वेत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये वाटर की जो बढ़ जाता है और इसका वर्ण या कलर भी बदल जाता है, और हजारों हजारों लोग उस दिन यहाँ स्नान करने आते हैं। तो हमारे संप्रदाय में एक महान वैष्णवी हुई है जिनका नाम था गंगा माता गोस्वामिनी। वो ओरिजिनली राजकुमारी थी बंगाल में, और वो उनके पिता को और कोई संतान नहीं थी, एक ही डॉटर थे, और पिता के बाद सारा जो राज्य का कारोबार है इन्हीं के ऊपर डाला गया, और ये संभालने लगी, और इनका कोई रुचि नहीं था विवाह करने में, तो इनका मन हमेशा भागता था कि मैं वृंदावन कब जाओ, कृष्ण की सेवा में अपने आप को कैसे पूर्ण रूप से नियुक्त करूं। तो ऐसी गंगा माता गोस्वामिनी की ये जो इच्छा थी बहुत तीव्र, वो भगवान ने जानी, और उन्होंने सोचा कि मुझे इजीली ये लोग जाने नहीं देंगे वृंदावन, तो उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को एक बार बुलाया और कहा कि आप क्या करो, मैं अलग अलग कार्य आपको सौंपती हूँ, और मैं एक महीने की छुट्टी के लिए जा रही हूँ बाहर, तब तक मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कैसे मैनेज करते हो। तो ये बताकर गंगा माता गोस्वामिनी जो युवा थी, और वो अपना जो बांग्लादेश में उनका राज्य था उसको छोड़कर वृंदावन चली जाती है, और वृंदावन जाकर, वृंदावन में कई सारे वैष्णव वहां निवास कर रहे थे, वहां बहुत तपस्विनी का जीवन जीती है, और फिर एक आचार्य हरिदास पंडित उनको अप्रोच करती है कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करो, कि क्योंकि दीक्षा लिए बिना ये जो मनुष्य जीवन है वो पशु के समान है। शास्त्र कहते जब तक व्यक्ति गुरु के द्वारा विधिवत दीक्षित नहीं होता तो वो व्यक्ति वास्तव में मनुष्य नहीं है, वो पशु ही है, क्योंकि पशु भी जन्म लेते हैं, भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं और एक दिन अपना शरीर छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से वो हरिदास पंडित को अप्रोच करती है, तो वो कहते हैं कि तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारे अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि तुम ये सब व्रत आदि पालन कर पाओगी और इतना तपस्यामय जीवन जी सकती हो, तो मैं सोचूंगा, तो इतना तपस्यामय जीवन जीती है वो वहां केशी घाट वगैरह में निवास करके, कि फाइनली हरिदास पंडित उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा प्रदान करके कुछ दिन के लिए उनको कहते हैं आप राधा कुंड में निवास करो और वहां भजन आदि करो, और फिर उसके उपरांत वो कहते हैं कि मैं आपके लिए एक सेवा देना चाहता हूँ। वो गंगा माता गोस्वामिनी को वो एक सेवा देते हैं कि उनको कहते हैं कि आपके लिए ये सेवा है कि आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ एक ही स्थान में क्षेत्र संन्यास लेकर वहाँ निवास करो। क्षेत्र संन्यास मतलब एक ही स्थान में रहना, उस टाउन या उस शहर या उस धाम से बाहर नहीं जाना। तो ये जब उनको ये व्रत दिया, ये सेवा दी, तो ये गंगा माता गोस्वामिनी को और भी ये कहा कि सार्वम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हुए हैं, उनका जो स्थान है वो अभी बिल्कुल ही खराब हो गया है या उजड़ा हुआ है, आप जाकर उनके विग्रहों की आराधना करो, वहां सेवा आदि करो और उनके स्थान को पुनर्स्थापित करो। तो ये सेवा उनको दी। तो गंगा माता गोस्वामिनी यहाँ आती है और उनका अनुराग सबसे अधिक श्रीमद् भागवतम में था और हरि नाम लेने में। तो गंगा माता गोस्वामिनी जब भागवत के बारे में बोलती थी तो ऐसे कहा जाता था कि जगन्नाथपुरी के हजारों हजारों लोग उनसे सुनने के लिए आया करते थे। इवन जो राजा मुकुंद देव थे उस समय, वो भी गंगा माता गोस्वामिनी से श्रीमद् भागवतम की चर्चा सुनने के लिए आकर उनके चरणों में बैठा करते थे, अपने मंत्रियों के समेत और पंडाओं के समेत। तो इस प्रकार से गंगा माता गोस्वामिनी का बहुत अधिक वर्चस्व था और बहुत अधिक विनम्र थी। तो ऐसे गंगा माता गोस्वामिनी यहाँ ही इसी तट पर, ये जो दिख रहा है घर सामने, उधर ही वो आश्रम है, वहां निवास करते थे। तो एक बार उनको लगा कि मुझे क्या करना है, माघ ये जो मेला था गंगा सागर मेला, मुझे गंगा में स्नान करना है, लेकिन मैं तो जा नहीं सकती गंगा सागर क्योंकि मैंने क्षेत्र संन्यास लिया है कि जगन्नाथपुरी से बाहर कभी भी जीवन में कदम नहीं रखूंगी या बाहर नहीं जाऊंगी। तो वो यहाँ श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए आए और उनकी वो डिजायर थी। तो इतना अधिक, ऐसे कहा जाता है कि पानी इतना अधिक उछलने लगा कि ये जल यहाँ से पहुंचता है जगन्नाथ टेम्पल में और गंगा माता गोस्वामिनी को भी लेकर वो जल अंदर पहुंच जाता है। हाँ, जब रात्रि में भगवान के पट बंद थे, फिर भी जल के साथ गंगा माता गोस्वामिनी बिल्कुल अंदर थी, गर्भगृह में थी। तो बाहर जब सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने सोचा कि अंदर से कैसी आवाजें आ रही है, सुबह सुबह जब जल्दी किवाड़ खोले तो देखा कि सबकी जो एक सब एक महान भक्त के रूप में जिनको देखते थे वो तो मंदिर के अंदर पहुंच गई है, गर्भगृह में है। सबको लगा कि ये तो चोरी करने के लिए आई होगी, भगवान के अलंकार आदि। हाँ, तो उनको दंड देने का प्रयास किया जा रहा था। तो राजा जो मुकुंद देव थे, भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आते और वो कहते हैं कि हे मुकुंद देव, ये गंगा माता गोस्वामिनी महान भक्त हैं और ये इनको किसी भी प्रकार का दंड आदि देने का प्रयास मत करो, बल्कि तुम अपने मंत्रियों के साथ उनके पास जाओ और उनसे दीक्षा लो। तो ऐसा वर्णन आता है कि पुरी के जो गजपति राजा मुकुंद देव है वो गंगा माता गोस्वामिनी से दीक्षा लेते हैं और वो उनको कहते हैं कि हे गंगा माता गोस्वामिनी, मैं उनका नाम तो इस नाम इसके कारण पड़ा जब वो गंगा इसमें स्नान करके वो भगवान के चरणों में पहुंची। और फिर जब मुकुंदेव कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बताइए मैं कैसे आपके लिए धन दूं, आपके लिए क्या आश्रम बनाऊं, क्या क्या करूं, तो वो कुछ नहीं मांगते। वो क्या मांगती है कि हे राजा मुकुंद देव, आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो एक दो की रोज मेरे लिए थोड़ा जगन्नाथ का प्रसाद मुझे प्राप्त होना चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी और चीज की कामना नहीं है। तो ऐसा उनका विशेष मनोभाव या एटीट्यूड था जिससे भगवान जगन्नाथ अति प्रसन्न हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है, शास्त्र कहते हैं कि जगन्नाथपुरी से अभिन्न है, जगन्नाथपुरी ये गंगा से अभिन्न ये स्थान है, श्वेत गंगा, जहाँ हमें आचमन करना चाहिए। अधिकतर डिवोटीज आते तो कई बार स्नान भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है। आचमन और स्नान में कोई अंतर नहीं है, तो आप हो सके तो आचमन कीजिए, जल का थोड़ा पान कीजिए और फिर गंगा माता को या प्रार्थना कीजिए कि जैसे वो भगवान के चरणों में निवास करती हैं, सारे जगत को पावन करती हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करे और हम पावन हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम श्वेत माधव का दर्शन करेंगे। श्वेत माधव, मत्स्य माधव, दोनों माधव वहाँ हैं। वो राजा के साथ भगवान वहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद हम जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। इधर से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो उसमें पहुंच जाएंगे हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।